शांति। अभी हम सबके बीच हम सब पहचानते हैं, हमारे शिलू दीदी पधारे हैं। शिलू दीदी जो हमारे यज्ञ के स्पीकर भी है और एजुकेशनल विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हो। हम सबको पता है कि बाबा का वरदान आपको मिला हुआ है मधुर वाणी का, जिसे आप अनेक आत्माओं को अपनी वाणी से भरपूर कर रहे हो और आप देश और विदेश में भी आपकी वाणी से अनेक आत्माओं को भरपूर कर रहे हैं। अभी आज हमारी बत्ती का आरंभ हो रहा है तो विशेष बत्ती का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उनसे अवगत कराने के लिए हमारे बीच पधारे हुए हैं। तो हम एक हाथ से हम शिलू दीदी का सम्मान स्वागत अभिनंदन करेंगे। शिलू दीदी
ओम शांति। बाबा के बच्चे जब आपस में मिलते हैं, भले इस कल्प में पहली बार भी मिले हो, लेकिन जानते हैं कि अभी मिले हैं तो अवश्य कल्प कल्प मिले होंगे। तो जब भी ब्राह्मण बच्चे आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? दुनिया में जब आपस में मिलते हैं तो एक दो को राम राम, जय श्री कृष्ण कहते ना, भगवान का नाम लेकर आपस में मिलते हैं। पर हम ब्राह्मण बच्चे कैसे मिलते हैं? शिव बाबा कहकर मिलते हैं। हाँ, तो कैसे मिलते हैं? सबसे पहले तो दृष्टि द्वारा मिलते हैं। दृष्टि द्वारा मिलन होता है। आत्मा आत्मा एक दो से मिलते हैं और फिर ओम शांति से मिलते हैं। आत्मा आत्मा को याद दिलाती है कि हे आत्मा, आप शांत स्वरूप हो। फिर वो भी जवाब में कहेगा ओम शांति, माना आप आत्मा भी शांत स्वरूप हो। बाबा ने ये बहुत सुंदर तरीका दिया है मिलने का। और जब बाप दादा बच्चों से मिलते हैं तो साकार में बाबा कई बार कहते थे डबल ओम शांति, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा तन में, तो शिव बाबा की भी ओम शांति तो ब्रह्मा बाबा की भी ओम शांति। आजकल अव्यक्त बाप दादा भी ओम शांति कहते हैं। और हम लोग, वैसे लोग हमें इसी रूप से जानते हैं। पहले तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारी, इस पर आजकल कहते हैं ओम शांति वाले, ये ओम शांति वाले। फिर बैज भी देखते हैं ओम शांति, कहाँ भी जाएं, एयरपोर्ट पर बैठते हैं या ट्रेन में सफर करते हैं, अच्छा आप ओम शांति वाले हैं, आपका टीवी में हम देखते हैं। तो टीवी द्वारा भी बाबा की बहुत सेवा हो रही है। जहाँ भी जाते हैं जैसे सब पहचानते हैं, ऐसे ही मुस्कुरा देंगे, हालांकि हम उनको जानते नहीं पर मुस्कुरा देते हैं, कहते आपको टीवी में देखा था। और वो मुस्कुरा देते तो हम ये नहीं सोचते कि पता नहीं मैं तो जानती नहीं ये मुस्कुरा क्यों रहे, लेकिन हम भी मुस्कुरा देते क्योंकि सोचते देखा तो होगा। और केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी। तो देखो बाबा ने कैसे अपने बच्चों को प्रत्यक्ष किया है, और हम बच्चे फिर बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं जहां भी जाओ जिससे भी मिलो उसको बाप का परिचय जरूर दो। आत्माएं भटक रही है, ढूंढ रही है, और हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को पहचान लिया है। केवल पहचान ही नहीं लिया है, हम उनको अपना बना लिया है, हमने उनके हम हो गए और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। दुनिया तो भटक रही है, हर एक भटक रहा है, भक्त तो भटक रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर देखें कि सब भटक रहे हैं, वैज्ञानिक भी भटक रहे हैं। बाबा ने उस दिन कहा कि वो ऊपर ग्रहों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं या सागर के तले में जाने की कोशिश करते हैं, अब आकाश ही आकाश और सागर ही सागर, कहाँ पहुंचेंगे, अंत तो पा नहीं सकेंगे। लेकिन बाबा कहते ये उनका अभिमान है, तो वो बाहर की दुनिया में जाते हैं और उनको क्या, चलो थोड़ा नाम मिल जाएगा, थोड़ा मान मिल जाएगा, थोड़ा धन मिल जाएगा बस। लेकिन तुम बच्चे अंदर की दुनिया में जाते हो, अंतर की, और इस अंतर की दुनिया में जाकर इतना विशाल अनुभव करते हो और तुम्हारा पूजन होगा क्योंकि तुम पावन बनते हो। उनका चलो थोड़े देर के लिए गायन होगा पर तुम्हारा तो पूजन होगा, पूजन भी होगा और सारा कल्प ही गायन है। भले आधा कल्प पूजन होगा पर गायन तो सारा कल्प ही होगा। सत्यु त्रेता में भी प्रजा महाराजा महारानी का गायन तो करेगी ना कि नहीं करेगी, जरूर करेगी। फिर द्वापर कलयुग में पूजन होता है, फिर ब्राह्मण रूप में भी गायन तो होता ही है, भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों का बहुत गायन है। फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हैं तो फरिश्तों का भी बहुत गायन है। फिर आत्मा बिंदु परम धाम में जाती है तो आत्माओं का भी गायन है, आत्मा सितारे के समान है वो, इसलिए दुनिया में तो कहते सितारों में दुनिया है, लेकिन हम एक एक सितारे में कितनी बड़ी दुनिया है उस दुनिया को लोग नहीं जानते। तो हम बच्चों ने खुद को भी पहचाना, बाप को भी पहचाना, बाबा की रचना को भी पहचान लिया, तीसरा नेत्र हमारा खुल गया, आदि मध्य अंत हम ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कल आज और कल की बात है। इतना सुंदर भाग्य हमको भगवान ने दे दिया है और उसमें फिर आप सब मधुबन में आए हो बट्ठी करने, ये जैसे सोने पर सुहागा वैसे ही भाग्यवान आत्माएं हो। और उसमें भी जो आत्माएं बाबा के पास यहाँ मधुबन में बट्ठी करने आई वो तो कितनी भाग्यवान, क्योंकि आप इतने सारे होंगे बड़ौदा के कनेक्शन के भाई बहने, और उसमें से कितना चुनना पड़ा होगा, हमारी निरंजना बहन को बड़ी मेहनत लगी होगी किसको हाँ करे किसको ना करे, क्योंकि लिमिट दी थी 200 से ज्यादा मत लाओ, तो चलो कईयों का नंबर उसमें लग भी गया होगा पर लास्ट मिनट कोई ऐसी समस्या आ गई होगी वो नहीं आ सके होंगे। और कई ऐसे होंगे जिनका कोई प्रोग्राम नहीं था पर एक कोई नहीं जा रहा है, चलो वो नहीं जा रहा है तुम चलो, तो ऐसे ही आ गए। तो जो यहाँ पहुंचे उनका तो भाग्य उदय है ही है। तो ऐसे भाग्यशाली आत्माएं हो आप, भाग्यशाली भी नाम बड़ा हल्का लगता है, इसलिए बाबा क्या कहते हैं पद्मा पदम 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 गुना भाग्यशाली, सौभाग्यशाली भी नहीं। हजार भी नहीं, पर पदम तो उसकी गिनती नहीं। कदम कदम में पद्मों की कमाई करने वाले हैं हम ब्राह्मण बच्चे, जो कमाई हमारी साथ चलेगी। इसलिए बाबा कहते ना, वो भले कितने भी पद्मपति हो, लेकिन वो पद्मपति आगे भी पद्मपति बनेंगे क्या? नहीं। और जितना यहाँ हमारा आंतरिक त्याग होगा, उतना ही ऊंचा भाग्य बनता है। इसीलिए अंतर की जो खुशी है, वो कभी भी हमारी कम नहीं होनी चाहिए, वो सदा कायम रहे। उसके लिए शक्ति भरते रहना है अपने में, क्योंकि कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जिसके कारण हमारी खुशी कम हो जाती है, मन में कई प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं, कभी कभी दुख भी उठा लेते हैं, कभी कभी समस्याओं से भी घिर जाते हैं। तो कई बार आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, इसीलिए मधुबन में आते हैं वापस वो शक्ति भरने, पावर हाउस से शक्ति भरने। बाबा साकार मुरलियों में भी कहा करते हैं कि तुम मधुबन में बच्चे आते हो अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, और बादल सागर से भर करके भरने जाते हैं। सागर पर देखो, देखेंगे बहुत बादल होते, क्योंकि सागर से जल भरते रहते हैं, और फिर जाते हो सब पर बरसने। तो तुम बच्चे बैटरी चार्ज करने आते हो, साथ साथ बादल भरने आते हो। तो ऐसा मधुबन जो वरदान भूमि है, परिवर्तन भूमि है, तपो भूमि है, बाप दादा के चरित्रों की भूमि है, माता पिता और सब वरिष्ठ दादियों की भी चरित्रों की भूमि है, ऐसे स्थान पर आप ये 3-4 दिन भट्ठी करने आए हो, तो अपने आप को कितना धन्यवाद देना चाहिए कि आपको यह मौका मिला है। लेकिन इसका पूरा पूरा लाभ लेना, अभी आ तो गए हो, पता है कि यहाँ आप अपनी बैटरी पूरी चार्ज करने आए हो, बादल भरने आए हो, शक्ति बाबा से लेने आए हो, लेकिन यहाँ आने के बाद एक सेकंड भी आपका व्यर्थ न जाए, यही आपका लक्ष्य हो। पहला लक्ष्य तो ये हो, क्योंकि कई लक्ष्य होते हैं, जैसे कोई बिजनेस करते हैं ना, तो कई गोल्स होते हैं, भाई एक साल में इतने तक करना है, दूसरे साल में ये करना है, तीसरे साल में ये करना है, तो कई गोल्स अपनाते, कई लक्ष्य अपनाते हैं उनके लिमिट अनुसार। तो लक्ष्य तो कई रखने पड़ते हैं, पर उद्देश्य एक ही होता है। लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है? लक्ष्य तो कई रखेंगे, पर उद्देश्य एक ही होता है, किस लिए ये सब कर रहे हैं। तो बाबा ने भी हमको लक्ष्य तो बहुत दिए, सबसे पहला लक्ष्य तो यही है कि भट्ठी में आना माना पकना, पकना माना परिवर्तन होना। कोई भी चीज अग्नि में पड़ती है तो परिवर्तित हो जाती है, कितनी भी कठोर चीज होगी अग्नि में पड़ते ही वो नरम हो जाती है ना। आग में डालते ना बर्था बनाते बैंगन का, तो क्या करते हैं, इतना गट्टो होता है तो अग्नि में डालते हैं, आग में डालने से वो धीरे धीरे नरम हो जाता है। तो बैंगन टमाटर कोई भी कैसे कठोर सब्जियां होती है, जैसे ही आग में पड़ी धीरे धीरे वो नरम हो जाती है। तो इसी प्रकार बाबा कहते, चाहे कई ऐसे बड़े कठोर हृदय के होते, संस्कार इतने कड़े होते हैं जो वो संस्कार बदलते नहीं है। तो इस भट्ठी में आना माना वो कड़े संस्कारों का भी परिवर्तन करना। चलो मोटे रूप में कोई विकार तो नहीं होंगे, काम क्रोध लोभ मोहंकार मोटे विकार में रूप से तो न भी हो, ब्राह्मण कहलाते हैं अपने आप को, परंतु उनके उन मोटे विकारों के जो बाल बच्चे हैं वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो इसीलिए उस वो भी कड़े संस्कार बन जाते हैं और चाहते हैं कि हम इनसे छूटे, लेकिन छूट नहीं पाते उनसे। तो फिर आग में तपाया जाता है ताकि वो कड़ापन, वो इतना कठोरपन, ऐसे कठोर संस्कार भी पिघल जाए, वो मिट जाए और आत्मा सच्चा सोना बन जाए। इसलिए सोने को भी इतना तपाते हैं, इतनी अग्नि में डालते हैं, वो लाल लाल हो जाता है और धातु जो भी पड़े हैं वो सब पिघलते जाते हैं और सच्चा सोना निखर आता है। तो बाबा कहते तुम वो सच्चे सोने हो। तो अनेक जन्मों के संस्कार ऐड होते गए, खाद पड़ती गई, जंक लगती गई, अब आत्मा मुलमा हो गई, शक्तिहीन हो गई। अब मेरे से योग लगाओ तो आत्मा फिर से शक्तिवान बन जाए। तो सर्व शक्तिवान से शक्ति लेनी है। आज तक तो हम कितनों से लेते आए, पर अब वो ऊंचे से ही हमें शक्ति लेनी है, ये हमें ब्राह्मण बनने के बाद पता चला। तो इसीलिए वो कठोर संस्कार यहाँ आकर बहुत सहज रूप से खत्म हो सकते हैं तपस्या करने से। तो एक तो वो कठोर संस्कार खत्म हो, ये पहला लक्ष्य है। अपने अंदर देखना कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा कठोर संस्कार है जो नहीं निकलता है, और ये 3 दिन के अंदर मुझे हर हालत में उसको बदल कर ही रखना है, बदल के ही जाना है, क्योंकि मैं परिवर्तन भूमि में आया हूँ। ये अवश्य एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य क्या है, जो बाबा कहते हैं कि अनेक जन्मों के पापों को भी दगत करना है। हमारे सिर पर बहुत पापों का बोझा है, भले हम बड़े नशे से कहते हम तो बाबा के हो गए, हम तो बाबा के बन गए, बाबा के सिवाय हमारा और कोई नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा कहते माया छोड़ती नहीं है, माया अपने ग्राहकों को पकड़ के रखना चाहती है। परंतु यहाँ तो माया नहीं आएगी ना, आएगी क्या? यहाँ भी माया छोड़ के आए ना बड़ौदा में, कि यहाँ लेके तो नहीं आया कोई? नहीं, ऐसे तो नहीं वापस जाएंगे फिर आ जाएगी माया, वो भी नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कैसे वो कठोर संस्कार तो खत्म हो ही, पर जो अनेक जन्मों के हिसाब किताब पापों का खाता है जो अभी तक है, वो धर्मराजपुरी में हमको चुकतो नहीं करना है। हमने भगवान को पहचाना है, उनके बन गए हैं, तो धर्मराज की सजाओं से पार होकर के फिर घर जाएं ये शोभता नहीं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे बने हैं। वो तो उनके लिए सजाएं होगी जिन्होंने भगवान को पहचाना नहीं है, पर हम तो उनके बन गए हैं, पहचानना तो क्या। हाँ, कई लोग कहते हैं ना, आप लोग भक्ति नहीं करते हो, आप लोग तो नास्तिक हो, आप लोग पूजा पाठ नहीं करते हो, नास्तिक हो। तो हम कहते हैं नास्तिक तो क्या, हमने तो भगवान को जान भी लिया है, पहचान भी लिया है। हाँ, वो कहते आप लोग मानते हो, हम कहते मानना तो क्या बड़ी बात है, मान लिया, जान लिया, पहचान लिया, और जिन देवताओं की आप पूजा कर रहे हो हम तो बन रहे हैं। तो मानना जानना पहचानना ये तो बहुत छोटी बात है, पर हम बन रहे हैं, हमें तो बनना है ऐसा, तो इसीलिए मानने की क्या बात है। तो इसीलिए बाबा ने हमें उसके पहले कहा है कि जो भी हिसाब किताब है वो सब यहाँ चुकतू करने हैं। चुकतू करने का एक लक्ष्य है, पर और साथ साथ नया तो कुछ हिसाब किताब बनाना ही नहीं है, नया भी नहीं बनाना है, चुकतू भी करना है, पर उसके लिए कुछ छोड़ना भी नहीं है। ऐसे नहीं कि कई ऐसे बाबा कहते हैं ना, सोचते हैं बस सब छोड़ छाड़ करके यहाँ ही बैठ जाऊं। बाबा कहते वो भी नहीं करना है, परिवार को भी संभालना है, अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी निभानी है, सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ जो आप 3-4 दिन के लिए आए हो तो बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर हो। जैसे शुरू शुरू में बहने भट्ठी में पकी, 14 साल तक किसी का मुंह नहीं देखा, तब इतनी निखर करके बाहर निकली और जहां जहां गई कैसे उनको देवी के रूप में पूछने लगे, देवी आई है, देवी आई है। हमारी मनोहर दादी बताती थी कि जब 14 साल भट्ठी करने के बाद जब आबू में आए तो मनोहर दादी को निमंत्रण मिला दिल्ली का, दिल्ली से उनके रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे, उनको निमंत्रण मिला कि आप आकर के आपने जो 14 साल पाया है वो हमको आकर के बताओ सुनाओ। तो वो जब अपने घर गई तो उनको बहुत अच्छा लगता था, ओम की ध्वनि करती थी, नहीं मनोहर दादी बहुत प्यार से करती थी। तो उसने घर में जाकर के सबको कहा बैठ जाओ, अपना अनुभव सुनाती थी और सबके आगे जैसे शुरू में बाबा मम्मा करते थे, तो अपने घर लौकिक में गई, उनके सब रिश्तेदार थे तो उनके आगे ओम की ध्वनि करने लगी। तो जैसे ही ओम की ध्वनि की तो अनेकों को जो वहां बैठे थे उनके सामने उनके रिश्तेदार, उनको दादी से देवी का साक्षात्कार होने लगा, देवी आई है, देवी आई है, देवी आई है, इतना नाम हो गया कि पहाड़ से देवी आई है, माउंट आबू के पहाड़ से एक देवी आई है, वो ओम की ध्वनि करती है तो उनसे देवी का साक्षात्कार होता है। तो देवी के भक्त तो बहुत हैं, तो फिर मंदिरों से उनको निमंत्रण मिलने लगा, जो देवी के मंदिर थे, देवियों के मंदिर, वहां से निमंत्रण मिलने लगा, तो वहां जाकर के भाषण करती थी और ओम की ध्वनि करती थी, तो भक्त लोगों को भी उनसे साक्षात्कार होने लगे। इतनी सभा हो गई उनकी मंदिरों में, वो सब छोटे पड़ गए, तो जमुना के किनारे जाकर के वो सुनाती थी। और फिर तो बाकायदे सेवा केंद्र भी खुल गया, बाबा ने कहा मकान सब लेके देवे और सेवा केंद्र खोल दो, तो पहला सेवा केंद्र दिल्ली में खुला। तो कहने का भाव है कि आप भी ये भट्ठी में ऐसे पके जहाँ दुनिया का कोई और सेक नहीं और कुछ भी बुद्धि में न हो, बस एक ही लगन हो, मुझे तपस्या करनी है, मुझे मौन तपस्या करनी है। आपके बैज पर लिखा हुआ है मौन तपस्या भट्ठी, तो मुख का मौन तो रखेंगे ही लेकिन मन का मौन भी रखेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा लक्ष्य मिला है हमें, हमें पावन बनना है, हमें संपूर्ण बनना है, ये सब लक्ष्य है हमारे सामने, हमें बाप समान बनना है। तो वहां तो शायद इतना समय नहीं मिलता है क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, वो छोड़ना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, फिर फंसना भी नहीं है, नया भी नहीं जोड़ना है, छोड़ना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, लेकिन जो है उसको निभाना भी है। लेकिन वो तो वहां जाकर के करेंगे ना, यहाँ तो बिल्कुल स्वतंत्र निश्चिंत होकर के आए हैं, या यहाँ भी आपको घर की याद आएगी, बाल बच्चे पोते दोते हा? या तो नहीं आएंगे, नानी जी कहाँ हो, दादी जी कहाँ हो, दादाजी कहाँ हो, कई बार होता ना बच्चों में मोह नहीं जाता है लेकिन पोतरे पोतरियों में और दोइतरे दोइत्रियों में बहुत मोह जाता है। हाँ, जाता है कि नहीं जाता है? जो बुजुर्ग हैं वो जानुभव ये कि कैसे वो ज्यादा प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो ब्याज रूप में मिला है ना। आप कैपिटल अमाउंट डालते हो बैंक में, तो वो कितना है उस पर ध्यान नहीं जाता है, वो तो आपका है ही है। लेकिन आप ये देखते हैं पासबुक में कि ब्याज कितना मिला, ब्याज पर ज्यादा ध्यान जाता है, क्योंकि वो अमाउंट और बढ़ गया तो ब्याज कितना मिला। तो पोतरे दोतरे पोतरियां दोतरियां ये ब्याज के रूप में, तो उसमें ज्यादा मोह चला जाता है और उनका भी मोह होता है, दादाजी कहाँ गए, हाँ नानी जी कहाँ गई, या जो भी। फिर फोन आए, फिर आप कहेंगे कैसी हो, फिर वो कहे कैसे हो। हाँ, तो हम तो कहेंगे सारे मोबाइल सब स्विच ऑफ, घर में सबको बता दिया ना कि हम आराम से पहुंच गए, अब 3 दिन और कोई हमको फोन ना करे, ये बता दिया या बताना है बाकी? हाँ, सबने बता दिया है। जिन्होंने नहीं बताया है वो हाथ उठाए। अच्छा, नहीं बताया है तो बता दो, नहीं तो आएंगे फोन पोतरे पोतरियों के। हाँ, याद करेंगे आपको, और वो ही करेंगे, आप नहीं करेंगे तो। पर उनको भी बता दो कि मैं ऐसे स्थान पर आई हूँ, आया हूँ, यहाँ पर हम बहुत तपस्या कर रहे हैं और एकदम हमको मौन में रहना है, इसलिए 3 दिन में मौन में रहूंगा, मौन में रहूंगी, इसलिए आप फोन नहीं करना। तो मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ, कर देती हूँ। हाँ, ये हो सकता है ना, हो सकता है ना। ये तो नहीं कि यहाँ मोबाइल बजना शुरू हो जाएंगे, नहीं। तो इसीलिए ये भी हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि मुख का मौन तो फिर भी सहज है, पर मन का भी मौन हो, कोई आत्मा की याद ना आए। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि जब शुरू में बट्टी रखते थे, बट्टी में आते थे, तो उनको कहा जाता था किसी को याद नहीं करना है, और अगर बाय चांस किसने याद किया तो पहले तो 7 दिन की बट्टी, पर अगर उसने किसी को याद किया तो और 7 दिन की, और 7 दिन की, पर आपके लिए नहीं होगी अगर याद किया तो, क्योंकि आपकी बट्टी पूरी होगी तो दूसरी बट्टी चालू होगी। कई कहते हैं ना, आते हैं शिविर में, आते हैं तो बड़ी हंसी की बात होती है, तो वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि लोग हमको कहते हैं जरा संभाल के जाना, वहाँ ऐसे वहाँ जाते हैं ना फिर वापस ही नहीं आते हैं। आप वापस आओगे ना, आप जा तो रहे हो, वापस आओगे कि नहीं? तो वो कहते क्यों नहीं आएंगे वापस, तो हम कहते हैं कि उनको कहो वापस तो आएंगे, अगर हम रहना भी चाहेंगे तो भी रखेंगे नहीं, रखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी शिविर पूरी होगी तो उसके बाद दूसरी शिविर चालू होनी है, तो रखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ कचार डालना है क्या सबको यहाँ रख करके? तो वो भी तो नहीं है, अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है, सब कुछ करना है। लेकिन ये जरूर है कि न्यारा भी रहना है और प्यारा भी रहना है, ये भी एक लक्ष्य बहुत ऊंचा है कि कहाँ न्यारा रहना है, कहाँ प्यारा रहना है। ऐसे न हो कि जब न्यारा रहना है तो प्यारे बन जाओ, और जब प्यारा बनना है तो न्यारे बन जाओ, ये भी न हो। तो तोड़ भी निभाना है, प्यारा भी बनना है, लेकिन साथ साथ न्यारा भी बनना है, क्योंकि नया कोई हिसाब किताब जोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर और चुक तो करना पड़ेगा। और ब्राह्मणों के लिए तो फिर और चेतावनी कि एक का 100 गुना बन जाता है, अज्ञानियों के लिए तो चलो एक का 1 गुना, और ब्राह्मणों के लिए तो 1 का 100 गुना। और दूसरा बाबा का नाम बदनाम, तीसरा अपना पापों का बोझा चढ़ा, तो फिर कब चुप तो करेंगे? इसीलिए इस पर भी पूरा ध्यान हो, तो यहाँ तो वो ध्यान देंगे ही, पर इतनी शक्ति भर के यहाँ से जाएं जो वहां भी ऐसे ही हो, तब कहेंगे कि हाँ मधुबन की बट्टी का तो बहुत उसका असर कितना ऊंचा है। तो ये हमारे सामने लक्ष्य है, और उद्देश्य क्या है कि संपूर्ण पावन बन करके वापस घर जाना है, संपूर्ण पावन बनकर घर जाना है। बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, मनुष्य से देवता बनना है, ये तो मोटा रूप है, लेकिन बाप समान बन करके, सच्चा हीरा बन करके, सच्चा फरिश्ता बन करके घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है, बस यही हमारे सामने उद्देश्य है। बाबा कहते हैं ये दो आंखें जो है, एक आंख में रखो मुक्ति और दूसरी आंख में रखो जीवन मुक्ति, बस इनके सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे, मुक्ति और जीवन मुक्ति, गति और सदगति, बस। तो इतनी हमें यहां से शक्ति भर के जानी है जो और कुछ भी दिखाई न दे, बस घर जाना है, नई दुनिया में आना है। तो घर जाना माना मुक्ति धाम, नई दुनिया माना जीवन मुक्ति धाम, गति और सदगति, बाप और वर्षा, जो बाबा कहते हैं ना, बस और कुछ भी याद न हो। पर फिर बाबा ये भी कहते हैं, अब अकेले तो नहीं जाएंगे, अकेले जाएंगे क्या, सबको साथ ले जाएंगे ना। हाँ, कई लोग कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं, आप लोग कहते हैं हम तो स्वर्ग में जाएंगे, आप हम तो स्वर्ग में जाएंगे, तो आप लोग तो स्वार्थी हो। हाँ, स्वर्ग में जाना है, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए, स्वर्ग वर्ग भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए, बस हमें तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो हम कहते हैं सबसे बड़ा स्वार्थ तो ये है, हमको मोक्ष चाहिए, ये स्वार्थ है या नहीं, कैसे स्वार्थ है ये, हमको स्वर्ग चाहिए ये स्वार्थ नहीं है, पर मोक्ष चाहिए ये स्वार्थ है, कैसे, हाँ हाँ, चक्र में आना ही नहीं है, ये दुनिया में बहुत दुख है, आना ही नहीं है संसार में, जन्म मरण ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस संसार से छूट जाएं, बस मोक्ष मिल जाए, तो ये हाँ, आप लोग तो स्वर्ग की बातें करते हो, तो स्वर्ग में तो बहुत प्राप्ति है, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। तो हम कहते हैं वास्तव में वो स्वार्थ है, क्यों, आप अपने लिए सोचते हो, औरों का कहाँ सोचते हो, चलो उनको भी मैं साथ ले जाऊं, वो कहाँ सोचते हो, मुझे मिल जाए मोक्ष, मुझे मिल जाए, और कोई तो किसी को मोक्ष में तो ले भी नहीं जा सकता है, भले कोई गुरु गुसाई दावा भी करे, लेकिन कोई लेके तो जा नहीं सकता। तो इसीलिए मोक्ष की इच्छा माना आना ही नहीं संसार में, ये स्वार्थ है, वास्तव में हमको आना है जरूर संसार में, लेकिन अकेले नहीं आना है, पूरी राजधानी बनानी है, तो सबको साथ ले जाना है और सबके साथ आना है। तो ये क्या हुआ, ये तो कितनी बड़ी सेवा हुई, जिसको बाबा कहते हैं तुम सेल्वेशन आर्मी हो, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो, दुनिया का बेड़ा डूब रहा है, तो तुम उस डूबते हुए बेड़े को, हाँ, नाव को किनारा ले जा रहे हो, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हो, सबको लक्ष्य दे रहे हो कि अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है, अब बुद्धि एक बाप से लगाओ। तो केवल हम अपने लिए नहीं सोचते हैं, हम सबके लिए सोचते हैं, सारी दुनिया को हमको स्वर्ग बनाना है, हमने मोक्ष पा लिया क्या, ये बड़ी बात, दुनिया का हमने क्या किया, हमको तो इस संसार को बदलना है, इतनी बड़ी सेवा हमें करनी है। अगर आप कहेंगे हमको ही केवल मोक्ष चाहिए, ही स्वार्थ हो गया, बस आना ही नहीं है, अरे बेचारे दूसरे डूब रहे हैं, उनको तो बचाओ, विकारों में डूब रहे हैं, विषय वैतरणी नदी में डूब रहे हैं, उनको पार लगाओ, उनको बाप से मिलाओ, उन्हें जन्म से अधिकार दिलाओ। इसलिए बाबा की हर मुरली में आता है कि बच्चे, हाँ, सबको बाप का परिचय दो, सबको दो, सब ढूंढ रहे, सब धर्मों की आत्माएं ढूंढ रही है, सचमुच अभी वो समय आ गया है जो सब धर्मों की आत्माएं ढूंढ रही है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, वो कहेंगे भगवान आएगा, तो एक हंसी की बात है, कोई एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी, उसको किसी ने कहा कि बस अभी तो बहुत ग्लानी हो गई है संसार में, अब भगवान को आना चाहिए, भगवान को आना चाहिए। तो वो बहन ने उसको कहा कि भगवान को आना क्या चाहिए, वो तो 80 साल पहले आ चुका है और अभी तो जाने की तैयारी कर रहा है वापस वापस जाने की तैयारी कर रहा है और आप कहते हो कि आना चाहिए। जैसे कोई आके रह करके अभी वो जाने वाला और हम कहें कि आना चाहिए। कई बार होता ना, यहाँ पर बहुत भाई बहने आते हैं तो अब किसी के हाथ में सूटकेस हम देखते हैं तो हम उसको कहेंगे कि अच्छा आप आ गए, वेलकम। कहते बहन जी हम तो जा रहे हैं, वेलकम कर रही हो, क्योंकि कब आए पता ही नहीं चला ना, इतने बाबा के बेहद घर में कहाँ ठहरे, कभी ओम शांति नहीं की। और उसको अचानक देख रहे हैं हाथ में सूटकेस है। अब वो बहन या भाई आया है या जा रहा है कैसे पता चले, तो हम उनको अब ये थोड़ी पूछेंगे जा रहे हो क्या, वो अगर आया हो और हम कहीं जा रहे हो तो हम उनसे पूछते वेलकम, तो कई कहते बहन जी वेलकम, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो 8 दिन रह भी चुका हूँ और जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो हमने फिर सोचा क्या करें, तो फिर एक बहन मिली तो मैंने कहा आप जा रहे हो, तो कहा नहीं नहीं मैं अभी तो आई हूँ तो उसके बाद हमने बोलना ही छोड़ दिया कि जा रहे हो या आ रहे हो बस मिले ओम शांति, बस ओम शांति, कैसे हो, ठीक हो, बस इतना ही, या और कुछ बात, आ रहे हो जा रहे हो ये पूछने का नहीं क्योंकि मान लीजिए अभी कुछ दिन उनको रहना है और आप उनसे, हम उनसे पूछते आप कब जा रहे हो, तो ये भी एक इंसल्ट हो गई ना, हा? कब जा रहे हो, अरे भाई ये पूछना होता है क्या। जैसे बाबा मुरली में भी कहते हैं ना, कई बाबा से पूछते बाबा विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, तो ये पूछना माना बाबा को कहना बाबा जल्दी जाओ कब जा रहे हो, विनाश होना माना कब जा रहे हो ये पूछना है कि नहीं, क्योंकि विनाश होना माना बाबा का पाठ पूरा ना, तो इसीलिए बाबा कब जा रहे हो ये तो मेहमान की इंसल्ट हो गई ना, तो विनाश कब होगा ये पूछना भी मानो बाबा की इंसल्ट हो गई। इसीलिए बाबा कहते वो मत पूछो, डेट कॉन्शियस मत बनो, सोल कॉन्शियस बनो, गॉड कॉन्शियस बनो, और बाबा तो कभी बताएंगे भी नहीं। और क्या होगा, कैसे परिवर्तन होगा, उसके लिए भी बाबा कहते वेट एंड वॉच, देखते रहो, अभी सारा बता दे तो अंत का मजा ही चला जाए, इसीलिए वो बताते नहीं है बाबा। लेकिन जो बाबा ने बताया है आज तक वो तो हम देख रहे हैं ना, धीरे धीरे वो सब बातें हो रही है। बाबा की कल की जो मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा बच्चे बहुत आएंगे बहुत आएंगे, बाबा सुनाते हैं, तो जिस समय बाबा की ये मुरली चली थी बच्चे बहुत आएंगे, तो उस समय लगता था क्या आएंगे, अभी तो इतने थोड़े सेंटर्स है, इतने थोड़े भाई बहने हैं, क्या आएंगे, लोग तो कितना कितनी ग्लानी करते, क्या क्या बहुत कुछ होता था। तो फिर बाबा कहे बहुत आएंगे बहुत आएंगे, तो उस समय लगता था बाबा कहते तो हैं ठीक है मान रहे हैं, लेकिन अभी वो मुरलियां जब अभी सुनते हैं तो सचमुच लगता है कि बाबा तो कितने दूरदर्शी थे जो पहले से ही सारा ये बता दिया, और जो बाबा ने आज से 50 साल पहले बातें कही वो कितनी इस समय की प्रासंगिक है। ऐसे नहीं लगता है कि कोई 50 साल पहले की कही हुई है ये साकार मुरलियां, 50 साल पहले मानो 65 की मुरलियां हो तो कितने साल हो गए, अभी 2015, तो 50 साल पहले की मुरलियां हैं तो, या उसके पहले की, और परंतु अभी इतनी प्रासंगिक लगती जैसे कि ये अभी हो रहा है। विनाश की बातें बाबा कहते हैं या जो कुछ भी प्रकृति की बातें बाबा कहते हैं तो अभी जैसे लग रहा है, उस समय नहीं सोच सकते थे, लेकिन बाबा ने कहा है तो होगा ये भी निश्चय था, पर अभी तो बाबा कहे या न कहे ये तो हो ही रहा है। कई कहते हैं कि शुरू शुरू में बाबा ने इतने साक्षात्कार कराए, विनाश के कराए या जो कुछ करा, अभी क्यों नहीं करा रहे, तो हम कहते अभी तो जरूरत ही नहीं है, सामने ही देख रहे हैं आंखों की जरूरत तो तब थी जब नहीं था और बाबा ने साक्षात्कार करा, अभी तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि सामने ही देख रहे हैं, और अंत में तो अपनी रिजल्ट का साक्षात्कार होगा। शुरू में तो अंत का साक्षात्कार हुआ या नहीं दुनिया का साक्षात्कार हुआ, विनाश का हुआ, लेकिन अंत में तो अपनी रिजल्ट का साक्षात्कार होगा। हम कहाँ तक है बस वो साक्षात्कार होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो बुद्धि में सदा धारण करो रहे कि मुझे घर जाना है, नई दुनिया में आना है, पर संपूर्ण होकर जाना है और नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। तो ये अगर हमारे सामने उद्देश्य पक्का होगा तो अवश्य उसके अनुसार हम पुरुषार्थ करेंगे, परंतु उसके लिए कुछ छोड़ना भी नहीं है। हम कायर नहीं है, हम कोई हद के सन्यासी नहीं है जो छोड़ करके चले जाएंगे। हम तो बेहद के सन्यासी है। हाँ, बेहद का सन्यासी माना छोड़ो कुछ भी नहीं पर फिर भी सब कुछ छोड़ो, छोड़ो कुछ भी नहीं परंतु सब कुछ भूलो, छोड़ो माना भूलो। तो छोड़ना भी नहीं और भूलना, ये मुश्किल है या सहज है? वैसे छोड़ करके भूलना ये बड़ा सहज है, पर छोड़ना भी नहीं और फिर भी भूलना, वो सहज है या मुश्किल है? कौन सा मुश्किल है? छोड़ करके भूल जाना वो सहज है, वो मुश्किल है, या छोड़ना भी नहीं और फिर भी भूलना, कौन सा मुश्किल है जी? सहज कौन सा? चलो सहज कौन सा है? छोड़ के चले जाओ आप, मोए मर गई दुनिया। हाँ, तो सहज है सब कुछ भूलना, पर छोड़ना भी नहीं है। आंखों के सामने भी है, देख भी रहे हैं, उनके साथ व्यवहार भी है, सब कुछ है, पर फिर भी भूलना। तो कौन सा सहज है, कौन सा मुश्किल है? दोनों ही सहज है कि दोनों ही मुश्किल है? फिर भी मुश्किल तो वही है कि रहो भी साथ में फिर भी भूलो। छोड़ दिया तो क्या बड़ी बात है, दूरबाज खुशबाज ऐसे भी होता है, दूर चले गए तो भूल गए, सामने है तो फिर ध्यान जाता है। तो सन्यासी हद के सन्यासी वो है, पर हम बेहद के सन्यासी माना, बेहद के सन्यासी का ये मिडिल पाथ है, ये मध्य मार्ग है। सन्यासियों की तरह छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि हम उनको माया तो नहीं समझते हैं, धन माया नहीं है, या बच्चे पोतरे ये सब माया नहीं है, वो तो माया समझ करके छोड़ते हैं। स्त्री माया है, धन माया है, बच्चे माया है, और बाबा कहते हैं माया नहीं है, स्त्री तो शक्ति है, बच्चे तो फूल है, कोमल फूल है, वो तो महात्मा है, और धन तो आवश्यक है, वो तो लक्ष्मी तो साक्षात धन की देवी है। तो छोड़ना भी नहीं है, लेकिन सामने होते हुए भी भूलना है। तो सन्यासी भी नहीं है जो सब छोड़ दे, और ऐसे भी नहीं फंसे हुए हैं जैसे दुनिया में लोग फंसे हुए। पैसा ही परमेश्वर है, उनके लिए वही भगवान है सब कुछ, बस पैसा 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 बुद्धि में दिन रात वही बुद्धि में चलता रहता है, वो भी नहीं है। तो इसीलिए वो मटेरियलिस्टिक भी नहीं है जो विकारों में फंसे हुए हैं, बिल्कुल इतने लिप्त हैं संसार में जो मोह माया में फंसे हुए हैं, वो भी नहीं है। और सन्यासी भी नहीं है जो सब छोड़ दिया, पर दोनों के बीच में ये मध्य मार्ग है। ये तन से भी सेवा करनी है, तन को भी माया नहीं समझते, वो तो तन को ही माया समझते हैं, इसलिए कष्ट देते हैं शरीर को। शरीर को कष्ट देंगे तो आत्मा पावन होगी, तो शरीर को कष्ट भी नहीं देना है, क्योंकि सहज मार्ग है, सहज योग है। मन को मारने की कोशिश करते हैं, दमन करते हैं, हम कहते हैं दमन भी मत करो, उनमें अच्छे अच्छे विचार लाओ जिससे आप वातावरण को शुद्ध बना सकेंगे, जहां भी होंगे आपके प्रकंपन चारों ओर फैलेंगे। शरीर से सेवा करो, जितना हो सके स्वस्थ भी रखो ताकि सेवा कर सको, मन भी आपका इतना स्वस्थ हो जो इतने ऊंचे विचार आप कर सको, और धन को भी सेवा में लगाओ, माया समझकर छोड़ना भी नहीं है और पीछे भी नहीं पड़ो। जो सहज मिले वो दूध बराबर, जो मांग लिया वो पानी, जो खींच लिया वो तो रक्त के बराबर है। किसका जबरदस्ती ले लिया, बद्दुआएं पाकर के ले लिया, तो वो तो किस काम आएगा धन? तो इसीलिए वो भी नहीं है। परंतु कैसे इस सहज मार्ग पर भी चल रहे हैं जो ज्ञान मार्ग है, और इस ज्ञान मार्ग से हम कैसे सहज अपने लंगर को इस कलयुग की दुनिया से पार ले जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इतना ऊंचा उद्देश्य हो तो उद्देश्य अनुसार हमें पावन बन करके, संपूर्ण बन करके, बाप समान बन करके, फरिश्ता बन करके घर जाना है। घर जाकर फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है, तब तो बाप का नाम वाला होगा ना दुनिया। कई बार हम पूछते हैं लोगों से इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, तो वास्तव में क्या मकसद है, क्या लक्ष्य है, उस ईश्वर का नाम रोशन करना। अभी ज्ञान सरोवर में स्पोर्ट्स विंग के लोग आए हैं, स्पोर्ट्स विंग आज उद्घाटन था, हम सुबह गए थे क्लास कराने के लिए, तो उसमें इतने सारे हैं स्पोर्ट्स विंग में आए हुए जिन्होंने बहुत मेडल्स लिए हैं, विदेशों में भी जाकर के मेडल्स लिए ओलंपिक्स में या वो भी आए हैं। तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप जाते हो ओलंपिक्स में या जहां भी जाते हो देश के लिए मेडल लेना, अपने लिए तो है ही है लेकिन देश को जिताना है, अपने देश के खातिर जा रहे हैं, वहां घूमने फिरने थोड़ी जा रहे हैं, पर किस लिए खेलने जा रहे हैं, ताकि देश को मेडल मिले। प्राइवेट पर्सनल मेडल मिला तो वो तो ठीक है, लेकिन भाई इंडिया को कितने मेडल मिले तो वो नाम होगा ना। तो जैसे वो लक्ष्य है वैसे इस संसार में हम क्यों आए हैं वो भी तो लक्ष्य होना चाहिए ना, उद्देश्य है इसका भी कि भगवान का नाम रोशन करना है, ये उद्देश्य है हमारा। तो क्या ऐसे हम कर्म कर रहे हैं जिससे परमात्मा का नाम रोशन हो? तो वो तो कहते हम तो ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि ईश्वर का नाम रोशन हमको करना, हमको तो लगता देश का ही नाम रोशन करना। हाँ देश का भी करना है लेकिन ईश्वर ने हमको भेजा इस दुनिया में, तो हमारे वो कर्म हो जिससे ईश्वर का भी नाम रोशन हो, तो ऐसा कर्म करना यहाँ सिखाए जाते हैं, तो ये उनको बताते हैं। तो इसीलिए इतना ऊंचा लक्ष्य लेकर के आप आए हैं, तो ये 3 दिन बिल्कुल मन का भी मौन हो, तपस्या भट्टी रखा है मौन तपस्या भट्टी आपके बैज में, तो जैसे ये बैज गले में लगाओ ना उस समय प्रण करना मौन तपस्या भट्टी है। ये ना हो कि हम बात करते रहें और ये सोचे ये तो दूसरा पढ़ रहा है, मैं थोड़ी पढ़ रही हूँ, हंसी की बात सुना रहे हैं। एक विदेशी भाई था, सारा दिन साइलेंस बैज लगा करके घूमता था लेकिन बातें करता रहता था। साइलेंस बैज लगा क्योंकि साइलेंस बैज बहुत लगाते, और बैज लगा करके घूमता रहे और बातें करता रहे। तो मैंने देखा हाँ और आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ खाली है जगह भाई थोड़ा, या और बहने इधर आ सकते हैं, यहाँ भी बहने ज्यादा है। तो मैंने उनसे पूछा भाई साइलेंस का बैज लगाया है और आप तो बातें कर रहे हो, तो कहता है बहन जी ये मेरे लिए थोड़ी है दूसरों के लिए है। मैंने कहा दूसरों के लिए कैसे, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ ना क्या लिखा है वो, क्योंकि ऐसे देखना पड़ेगा पढ़ने के लिए, दूसरे पढ़े ना साइलेंस कि मेरे से बात मत करे, वो क्यों करते हैं मेरे से बात, तो दोष फिर दूसरों पर कि वो मेरे से करते हैं, उनको देखना चाहिए कि मैं साइलेंस में हूँ तो इसलिए बात नहीं करना है। अभी ये तो दूसरों को दोष देना हुआ, पर आपने ये बैज पहना माना, एक पान का बीड़ा उठ लिया, अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, गले में ये फंदा है फंदा होता है ना, तो गले में ये फंदा डालते ना, वो जैसे गले में डालते ना वो क्या बोलते है फांसी देते हैं, तो ये फांसी कहो या जो भी कहो याद की फांसी चढ़ी रहे, तो ये बाबा की याद दिन रात चढ़ी रहे, तो इसलिए आजकल वो बैज भी नहीं देते, बस गले में लगाओ, क्योंकि वो बैज देते ना तो वो दूसरे शर्ट में रह जाता है। अभी ये तो पड़ा है तो निकालना पड़ेगा ना, वो तो भूल गए दूसरे शर्ट में रह गया, अब दूसरा शर्ट पहना तो वो तो उसी में रह गया, या पॉकेट में रह गया, यहाँ तो पॉकेट में भी नहीं रख सकेंगे और लगाकर लगाना भी नहीं है जो फिर रह जाए, इसलिए गले से उतारना है और गले में लगाना है, इसीलिए ये आपको दिया आजकल, ये अच्छा सिस्टम बनाया है ताकि जब उतारो तो ये नहीं सोचो कि बस फ्री हो गए, वो सोने के लिए उतार रहे हैं, पर फिर सवेरे तैयार होकर के लगाया और भले पहले ही लगा लिया, उठे और लगा दो, क्योंकि अमृत वेले योग भी आपको करने आना है, तो हर वक्त लगा रहे कि हाँ हम मौन तपस्या भट्टी में आए हैं, मौन तपस्या भट्टी में आए, बार बार देखते रहो तो ये फांसी पर लटके रहो। अगर ये शब्द कहने में आता है, बाबा भी कहते याद की फांसी लगी रहे तो सिर जो है वो ऊपर की तरफ ही होगा, जैसे किसको फांसी लगती है ना और वो मर जाता है तो सिर क्या होता है उनका, ऊपर लटका हुआ होता है, पैर नीचे, तो इसीलिए सिर हमारा ऊपर की तरफ हो। जब शमशान में ले जाते हैं डेड बॉडी को तो शमशान की तरफ आते हैं तो फिर बॉडी सिर को शमशान तरफ ले जाते हैं, तो हमारा सिर किस तरफ है, नई दुनिया की तरफ, और लात जो है वो पुरानी दुनिया की तरफ, और आप मोए मर गई दुनिया। बस ये 3 दिन का आपका अनुभव हो तब आपकी ये योग तपस्या भट्टी सफल होगी। एक के सिवा और कुछ भी याद न हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो सच्ची मीरा बन जाएंगे, सच्चे ज्ञानी तो आत्मा बन जाएंगे, और बाबा ही आंखों में होगा और बाबा के पास सहज ही हम पावन बन करके वापस जाना है। इसी उद्देश्य के आधार से हर संकल्प करेंगे और हर श्वास लेंगे, अपने कदम उठाएंगे, ठीक है। ये 3 दिन यही अनुभव करना, बाकी आपकी दिनचर्या क्या होगी कैसे होगी वो तो आपको निरंजना बहन सब बताएंगे, लेकिन ऐसे लगे जैसे मधुबन में सब फरिश्ते घूम रहे हैं। हाँ, ये लगे ही नहीं कि इतने सारे भाई बहने हैं, क्योंकि मधुबन छोटा है, शांतिवन की भेंट में तो मधुबन बहुत छोटा है, पर ये 4 धाम की यात्रा आपको रोज करनी है, रोज बाबा के संग ये अलग अलग जो धाम बाबा के हैं वह अलग अलग अनुभव करना है, बाबा के कमरे में बाबा को मात पिता के रूप में अनुभव करो, हिस्ट्री हॉल में बाबा को टीचर के रूप में अनुभव करो, शांति स्तंभ पर बाबा को सतगुरु रूप में अनुभव करो, बाबा की झोपड़ी में बाबा को सखा रूप में अनुभव करो, अब उसका बहुत विस्तार है, तो ये अनुभव अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच सर्व संबंध हमने बाबा से ही जोड़े हैं, एक मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई, ये अनुभूति 3-4 दिन पूरी करके जाना, और यहाँ से जब जाओ तो एकदम कड़े संस्कार खत्म, और बीच में हम ये भी आपका आएगा जरूर आपके प्रोग्राम में, बाबा को पत्र लिखने का है, बाबा को पत्र भी लिखना है और बाबा से वायदे भी करना है, ताकि वो वायदे आप निभाएंगे, ये अंदर में लक्ष्य रख करके आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत मुबारक है आपको कि आप यहाँ पहुंचे बाबा के घर में, इस शांत वातावरण में, दुनिया की निगाहों से दूर ये 3 दिन मौन तपस्या भट्टी पूरी पूरी करना और सफलता को पाना, यही हमारी शुभकामना है आपके लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ठीक है। चलो अभी हम बाबा की याद में थोड़ी देर बैठ।
मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाते। आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है।